नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदिरये मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गुरु यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वागीशायस्य वदने वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहम् अहं भजे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती मैस्थिति हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम केवलम् कलौ नास्त्येव 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 गतुरं यथा वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधूतं सावधूतं पर्यनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीनिशाखानुतांश श्रीकृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते सप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसृते देवे प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम नामैव केवलं कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा प्रसंग रखा गया बलि ब्राह्मण प्रसंग श्रीमद् भागवत के दस विषय होते हैं उनमें से एक विषय का नाम है मन्वंतर
मन्वंतर शब्द का अर्थ होता है मन्वंतर सद्धर्म, अर्थात एक एक मन्वंतर है जो महान महान अवतार हुआ है, जो महान महान भक्त हुए हैं, उनकी लीला कथाओं का श्रवण करना। श्री परीक्षित महाराज इन सभी लीला कथाओं का श्रवण करने के लिए परम भागवत के 12वें स्कंध में श्रीपाद श्री सुखदेव गोस्वामी अपना अंतिम उपदेश देते हैं। अंतिम उपदेश परीक्षित महाराज जी को करते हैं। हे परीक्षित महाराज, जो अत्यंत दुखमय दुष्कर गौसागर को पार करना चाहता है, हे महाराज परीक्षित, जो व्यक्ति इस संसार में दुख दावाग्नि से निरंतर तद्विमुख होता है, उनके लिए श्री पुरुषोत्तम श्री कृष्ण लीला बिहारी को लीला कथा रस पान रूपी नौका के अतिरिक्त और कोई दूसरा साथ नहीं। उनका अंतिम उद्देश्य श्रीपाद श्री सुखदेव गोस्वामी जी का, इन उपदेशों के आधार पर हम सभी भक्तों का एकमात्र धर्म है श्रीमद् भागवत। संसार संघम अतितोत्तरम पितर्षो नान्या प्लवः भगवतः नाना प्रकार के दुख कष्ट यदि व्यक्ति उद्धार होना चाहता है, उसके लिए एकमात्र साधन है भगवान की लीला। उन रस में डूब जाना, मतवाला हो जाना, यही जीवन का चरम एवं परम श्रेय। इसलिए परीक्षित महाराज एक चातक की भांति सदैव एक कथा वर्षा की आकांक्षा करते हुए सुखदेव गोस्वामी जी मुख चंद्रमा को देखते रहते हैं और मनोम करने सद्धर्म। सद्धर्म शब्द का अर्थ होता है सताम धर्म। सताम कहते हैं उन भक्तों को जिन्होंने भगवान की शरण ले रखी है, इसलिए भक्त को सत कहते हैं। भगवान में सताम, इसलिए भगवान का एक नाम है सताम गति। क्योंकि भक्तों का जो अंतिम शरण है, अंतिम लक्ष्य है, वो है श्री पुरुषोत्तम लीला बिहारी। उनकी कथा के अतिरिक्त जीवन का और कोई ध्येय कोई पाठ्य और सागर से पार करने के लिए कोई सुदृढ़ नौका और कुछ भी साधन नहीं है। ये श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी का अंतिम उपदेश है। मेरे भक्तों, सद्धर्म शब्द का अर्थ होता है समर्पण, आत्मसमर्पण। भक्तों का एकमात्र लक्ष्य है समर्पण विधि को पूरा कर लेना। धीरे धीरे करके भक्त है जिस भक्त में समर्पण नहीं है, वो केवल नाम से मात्र भक्त है, उसकी भक्ति खोखली है। सब जगह यही है जन्म अनेक के उधर ही अब ही आज हो ही राम को नाम तुलसी प्रतीक। श्री राम के हो करके राम का नाम लेना, कबीरा जी गोस्वामी कहते हैं, शरणागत अकिंचन एक तार मध्य प्रवेश आत्मसमर्पण। शरणागत अकिंचन एक तार मध्य प्रवेश आत्मसमर्पण। जो शरणागत भक्त है, अकिंचन भक्त है, उनका एकमात्र कार्य आत्मसमर्पण, अपने इष्ट के श्री चरणों में, अपने गुरुदेव के श्री चरणों में आत्मसमर्पण करने, बस इतना सा काम। तार मध्य प्रवेश है आत्मसमर्पण, अकिंचन बाहरी भोग से बिल्कुल विरक्त है, एक भी कोई वस्तु नहीं रखी जिससे उसका भोग हो सके। अकिंचन, किंचन माने भौतिक वस्तु, अकिंचन माने जिनके पास किसी भी प्रकार की भोग की वस्तु नहीं है, शरणागत होना चाहता है। कबीराज गोस्वामी कहते हैं एकमात्र काम है आत्मसमर्पण करना, बस मां मत जला के है जो कि तुम हो और अपने हुआ पते नहीं है। यही शरणागत की पात्र, यही विद्या जिस ग्रंथ में पढ़ाई जाती है उस ग्रंथ का नाम है समर्पण। यही विद्या जिस ग्रंथ में पढ़ाई जाती है यही शरणागत की विद्या जिस ग्रंथ में पढ़ाई जाती है उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवद् गीता। यही शरणागति जिस ग्रंथ में पढ़ाई जाती है उस ग्रंथ का नाम है भक्ति रसामृत संयोग। अनेक ग्रंथों से केवल एक ही विद्या हमको सीखने को मिलती है, वो विद्या है शरणागति, आत्मसमर्पण। जीवन का ध्येय, मानव जीवन का लक्ष्य की पूर्ति इसी से ही हो पाती है। मेरे मित्रों भक्तों, भागवत के अष्टम स्कंध में ऐसी प्रकरण है जिसमें भक्तों के जीवन में सिर्फ शरणागति ही लक्षित होती है। अष्टम स्कंध के अंतर्गत चार प्रकरण है। प्रथम प्रकरण माना जाता है गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र के जीवन में संकट आया था और उन्होंने पूर्ण समर्पण किया। भगवान श्री हरि को देखकर एक कमल पुष्प अपने सिंह से उठाया, हे हरि आप उसे आर्त की विपत्त को खंडन करो। तो उन्होंने उनको दूसरा प्रसंग आया सागर मंथन। वहां उस प्रकरण में समर्पण ही समर्पण, देवता हो चाहे दानव हो, मंदिर पर्वत को उठाने में समर्पण है। मंदिर पर्वत को ला करके रखे सागर में, रखे तो उसका आधार क्या है, वो रखा नहीं गया। फिर भगवान की तरफ कहते चलो पर्वत रख लीजिए, उसको मक्खे मंथन करे वो सीधा रहे। सीधा रहने के लिए भगवान से निवेदन किए, फिर भगवान समस्त भूमि धारण करके उस मंदिर पर बैठ कर उसकी सीधा की। और एक बात कहते हैं, मंदिर पर्वत भी आ गया, आधार भी बने और उसको सीधा भी किए, पर उसको खींचे थे। भले ही नेती बासी की बन जाए, पर खींचने के लिए भगवान यहाँ पर भी समर्पण है और तीसरा प्रश्न है बलि महाराज जी का प्रश्न और उनके जीवन में आत्मसमर्पण भी कुछ हम लोग को पाठ कराया जाता है बलि महाराज जी के प्रश्न आत्मनिवेदन के रूप में पढ़ाया जाता है। बलि महाराज जी ने अपना सब कुछ निवेदन किया था भगवान श्री राम और चतुर्थ प्रश्न है महासागर में एक सामान्य जीव उसकी क्या ताकत है। इसलिए अष्टम स्कंध में मन्वंतर का वर्णन आता है उस मन्वंतर का दूसरा शब्द है सद्धर्म और सद्धर्म शब्द का अर्थ होता है समर्पण। इसी प्रश्न के दौरान हम लोग आज एक प्रश्न चर्चा करेंगे इसका नाम है बलि बामन प्रश्न अथवा भक्त बलि का स्वरूप उनका जीवन उनका इतिहास किस तरह से भगवान के श्री चरणों में उनका समर्पण ये सारी बातें हैं जो उनका प्रश्न को हम धीरे धीरे समर्पण करता है हमको सीखने को मिलती है। आइए भगवान बामन देव से आशीर्वाद की कामना करते हुए आप सभी दर्शनों का आशीर्वाद कामना करते हुए इसी प्रश्न का शुभारंभ करते हैं। लिखा नहीं हुआ है पर हम उच्चारण करते हैं आप लोग मेरे साथ साथ उच्चारण कर देते हैं। अथ पंचदशो अध्याय है राजा बलि की स्वर्ग पर विजय राज उवाच बलेः पदत्रयम् गुणेः तस्मात् हरिः अयाचत विश्वेश्वरः कृपणवत् लब्ध अर्थोऽपि बबन्ध तम। राजा परीक्षित ने पूछा हे भगवन श्रीहरि स्वयं ही सबके स्वामी है। फिर उन्होंने तीन दिन की भांति राजा बलि से तीन पद पृथ्वी क्यों है। इतना सुंदर प्रश्न है। जब मन्वंतर का वर्णन होता है आप लोग जानते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मन्व आते हैं। 14 मन्वों की अनेक अनेक प्रकार की लीला है। जब सुखदेव गोस्वामी वर्तमान मन्वंतर की व्याख्या करते हैं वैवस्वत मन्वंतर की उसमें कहते हैं कि बलि को छलने के लिए भगवान ने वामन अवतार ग्रहण किया। और एक बात है भक्तों भगवान जदा सदा अवतार लेते हैं ना जाने कितने अवतार हैं। शुद्ध गोस्वामी कहते हैं हो सकता है पृथ्वी के रजगण को कोई दिन में समर्पण हो जाए पर भगवान के अवतारों को गोस्वामी जब कहते हैं वामन अवतार का प्रसंग है कहते हैं राजन किसी वैवस्वत मन्वंतर में भगवान देव योनि में आए थे। कहीं बिना अवतार धारण करते हैं जल में उनकी सेवा होती है कहीं पक्षी का अवतार धारण करते हैं जल और स्थल उभय जगह में रहते हैं कहीं मानव अवतार लेते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण राम उसी प्रकार से अब की बार भगवान देव योनि में आ रहे हैं। देव मानव तिर्यक कभी पशु योनि में जाते हैं कभी मानव योनि में जाते हैं कभी देव योनि में जाते हैं तो भगवान वामन जो आए थे वो देवता के रूप में आए थे इंद्र के छोटे भाई बन करके आए थे इसीलिए उनको कभी कभी उपेंद्र भी बोलते हैं उपमाने छोटा इसलिए वामन भगवान को उपेंद्र भी बोलते हैं इंद्र के छोटे भाई तो छोटे लेकिन सारा खर्च इंद्र जी जो भी करना चाहते हैं उसे जी के आगे का मुकाबले करते हैं। और परीक्षित महाराज जी के मन में प्रश्न था कि हे भगवान, आपने बताया था कि बामन भगवान बलि महाराज जी के छल पूर्वक सारा ब्रह्मांड सारा विश्व में ये शक्ति है। और बलि महाराज को उन्होंने तीन पद भूमि मांगी थी, भिखारी आता है तो इस तरह से मांग नहीं करते। बले ने पदत्रय भूमि कस्मात हरि रजा के तरह भक्ति इस तरह है, ये सारा विरोधाभास है। समस्त विश्व के ईश्वर होते हुए भी वे भिखारी क्यों बने? ऐसे कृपण की माटी तीन पद भूमि की याचना करने क्यों गए? और दूसरी बात, जब तीन पग भूमि मनमांगी चीज उन्हें मिल गई फिर उन्होंने बलि को बांधा क्यों? तो ईश्वर का मांगना और बलि का बंधना ये दोनों विपरीत बात है। दिया फिर भी बंधा, और ये ईश्वर है विश्वंबर है फिर भी मांगने चले, ये दोनों परस्पर विरुद्ध बात है। परीक्षित महाराज जी बड़े मजक सुनता थे, उनमें प्रमाद नहीं था। हाँ, श्रोताओं में एक विशेष गुण होना चाहिए, उनको अप्रमाद ही होनी चाहिए। प्रमाद शब्द का अर्थ होता है कि ध्यान पूर्वक को श्रवण ना करें। जब हरिदास वैकुंठ से हरिदास आते हैं और गोकर्ण जिसे कहते हैं कि कक्षा कैसे श्रवण करनी चाहिए, कहते हैं श्रोता को अप्रमादी होकर सुनना चाहिए। प्रमाद किया तो ना जाने क्या कौन सी कथा हो रही है और कौन सी कथा हो रही है। परीक्षित महाराज बहुत सजग श्रोता थे और उनके जीवन में केवल सुनना ही काम था, बाकी सात दिन के बचे प्रकाश उनको सुनना ही था। और उनका भाग्य अच्छा था, सुखदेव गोस्वामी जैसे परमहंस चक्र चूड़ामणि मिले, जो परम विरक्त व्यास देव के तपकुतन पुत्र, और उन्होंने भागवत कथा श्रवण कराया था। परीक्षित महाराज जी जैसी बात करने वाले कौन हो सकता है? तो एक सजग श्रोता होने के नाते उन्होंने प्रश्न पूछ लिया, कस्मात ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? एतद विदितुम इच्छामि महत् कौतूहलम् विदः। सभी श्रोताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए कहते हैं, हे गुरुदेव, ये मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप इस संशय को छेदन कीजिए। यज्ञ परस्य पुनस्य बंधनम चापि अनावश्यकम्। ये यज्ञ स्वर है, समस्त यज्ञों का भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सारे लोगों के महेश्वर होते हुए भी तीन पग भूमि की याचना करें आप? और बलि महाराज बिल्कुल निरपराध थे, क्यों ऐसा उनको क्यों बंधे? बिल्कुल उनके प्रश्न सुनने से निकल, ऐसा प्रश्न सुनने से गुरुजनों को गुरु को शिक्षक को बहुत ही प्रसन्नता होती है। वो समझते हैं कि हमारा शिष्य ठीक ठीक से सुनता है, हमारा छात्र बढ़िया है। चारणों पर जिसको बैठे हुए हैं उनका एक महामंत्र है, उनको याद आ गया। वो कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला जाता है। निद्रा देवी कहीं रहती है तो आदर के भक्त के चित्र में विराजमान हो जाती है। जैसे ही महाप्रसाद गोविंद चालू होता है और निद्रा देवी भाग जाती है। ये एक विशेष मंत्र है, जो भी हो पर सबके लिए नहीं होता है। परीक्षित महाराज जी जैसे श्रोता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुनने के लिए ही उन्होंने अन्न करता और उस युद्ध में देवता लोग अमृत पान करके बड़े ताकतवर हो गए थे और उन्होंने असुरों को परास्त कर दिया और असुरों का जो राजा था दैत्यों का राजा था बलि और उनको प्राण से मार दिया। बलि महाराज मर चुके थे पराजित शीर सुधि पराजित स्त्री रसुभि इंद्रेण राजन भृगुभि सजीविता सर्वात्मना तान भज शिष्यो महात्मार्थमिवेकम् बलि के पास जो ऐश्वर्य था समस्त ऐश्वर्य उसे छीना गया और फिर देवताओं को ले गया और सुभी से हाथ को जान से हाथ होना पड़ा मारा गया। इंद्र किसके द्वारा मारा गया? उन्हें इंद्र के द्वारा मारा गया लेकिन जीवित कैसे हुआ? भृगुवंशी ब्राह्मण शुक्राचार्य के द्वारा उनको जीवन प्राप्त हुआ। उसमें शुक्राचार्य के पास एक विशेष विद्या थी, उस विद्या का नाम है मृत्यु संजीवनी विद्या। अनेक तरह तरह की विद्या होती है, चाणक्य पंडित ने कहा अनेक 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 विद्याएं हैं, अनंत शास्त्र बहुराष्ट्र विद्या तरह तरह की विद्या है। तो एक विद्या का नाम है मृत संजीवनी, यानी कि जो मृत व्यक्ति है उनको जो विद्या जीवन दे देती है उस विद्या का नाम है मृत संजीवनी। जैसे भागवत में महारानी कुंती को एक विद्या प्राप्त की जो उन्होंने दुर्वासा की सेवा करके प्राप्त की, उस विद्या का नाम है देवभूति विद्या। जैसे भागवत में लिखा हुआ है देवभूति विद्या का अर्थ होता है कुंती जिस देवता का आवाहन करती थी वो देवता विवश होकर के आ जाता था। सूर्य को बुलाया सूर्य आ गए, है ना, इंद्र को बुलाई इंद्र भी आ गए, जिसको बुलाया वो सभी देवता। ऐसे तरह तरह की विद्या है। हमारी वेद विद्या है अध्यात्म विद्या, इसको दूसरे शब्दों में कहते आंतरिक विद्या अथवा भगवान सरल भाषा में कहते अध्यात्म विद्या, अध्यात्म ज्ञान विद्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शन भगवत गीता के पहले अध्याय में कहते हैं। हमारी ये विद्या को कहते अध्यात्म विद्या और संसार में जो विद्या पढ़ाई जाती है उनको कहते हैं भौतिक विद्या। वे विद्या वेदिकव्य होती वेदांत में उतनी शब्दों की वर्णन है दो प्रकार की विद्या है। तो ये जो विद्या है ये मृत संजीवनी विद्या, हमारे गुरु महाराज कहते हैं मृत संजीवनी विद्या सबको प्राप्त नहीं थी, केवल शुक्राचार्य को प्राप्त। बिना उपना कभी कभी शब्द का अर्थ होता है विद्वान, धीमान, पंडित। शुक्राचार्य के पास अश्रम थे, आचार्य थे और महान विद्वान, भगवान अपने विभूति के रूप में उनको देखा था। कभी नाम उपना कभी कवियों में कविवरों में मैं उपना हूँ, मैं भगवान से शुक्राचार्य हूँ। तो शुक्राचार्य जी ने उनको जीवित किया, इनको जीवित किया जाए कि वो व्यक्ति किस तरह से समर्पित होता है। सर्वात्मना तान भज त्रिगुण बलि, महाराज बलि ने सर्वात्म अपना प्राण मन तन देकर के उनकी सेवा की। शिष्य वो महात्मा, वो कैसे शिष्य थे? वो महात्मा शिष्य। हम लोग शिष्य हैं गुरात्मा, हम लोगों के मन में गुरु की आज्ञा पालन के अतिरिक्त अनेक अनेक बुराई शक्तियां हैं, अनेक अनेक तीव्र इच्छाएं हैं। लेकिन बलि महाराज के मन में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सिर्फ क्यों महात्मा वो इतना उदार चेतनशील शिष्य थे, क्यों महात्मा कहा गया? उन्हें सर्वात्मना तान अवगत भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा के बलि महाराज ने सर्वात्मना अर्थात मन धन प्राण गुरु महाराज बावन भगवान की कथा करते हैं तो एक प्रसंग है वो एक आचार्य का नाम नहीं बताते, बोले एक आचार्य ने बताया कि धन के बिना जो सेवा की जाती है वो सेवा सुप्त सेवा है। तो मैंने जब टीका ढूंढा उसमें वीर राघवाचार्य की टीका मिली, उन्होंने लिखा है धन के द्वारा जो सेवा होती है वही सेवा ठीक है, न तो सुस्त भक्ति महाराज जी के प्यार का उदाहरण देते हैं। तो एक हिंदी कवि ने रचा है, तन से सेवा सब कोई करे, धन से करे न कोई, जो धन से सेवा करे साथो से बत सोई। महाराज जी ने कहा सब लोग तन से सेवा करते हैं, धन से कोई नहीं करता, और जो धन से सेवा करे साचो सेवक सो। बोले वही सेवक साचो है जो बिल्कुल धन दे करके सेवा करता है। जैसे वीर राघवाचार्य ने लिखा है, जीवनम प्रापितो भृगुणाम शिष्यो बलेर विरोचनी तान भृगुन केवल सर्वात्म करण प्रय के न करण माने जिनसे काम होता है, करण प्रय माने कायेन मनसा वाचा। हमारे पास तीन करण है, तीन साधन है, क्या है? हम वाणी बोल सकते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए वाणी का साधन है, वाणी गुणाम पथने श्रवण कथा है। हम यदि वाणी का प्रयोग करते हैं उस वाणी से हमारी भगवत प्राप्ति हो जाती है। दूसरा साधन है शरीर, काय न वाचा और मनसा मन के द्वारा। तो वीर राघवाचार्य कहते हैं कर्ण त्रय के न महात्मा उदार मना अर्थ निवेदन। वे महात्मा बलि अपने तीन साधनों से अर्थात कायेन मनसा वाचा धन समर्पणेन न केवलम सुस्त भक्ति इत्यर्थ। बोले सुस्त भक्ति इसका मतलब होता है कि जो भक्त पैसा के बिना केवल शरीर की शारीरिक सेवा करता है और उसमें अर्थ दान करने की अवस्था है, अर्थ दान करने की सक्षमता है, वो सक्षम है, तो उसकी भक्ति सुस्त है। भागवत की यही तो सीखना चाहिए, प्रति श्लोक प्रति अक्षर नाना अर्थ होता है। आजकल एक फैशन चल रहा है भागवत में उछल कूद कर दिया, और सात दिन में भागवत कैसे होगा? इन्हीं चीजों को जब हम नहीं सीखेंगे तो भागवत का सार अंश हम कैसे सीख पाएंगे? और हम एक परंपरा को हमें एक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे आप करें चाहे हम करें। संसार की जनता देखती है कौन करते हैं, किस कौन के भक्त जन करते हैं, और किस कौन के परम आचार्य अभय श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने से भागवत की विधि बताई। उन्होंने कहा श्रीमद भागवत अर्थानम आस्वादो रसिके साधन। बोले भागवत के माध्यम से तुमको हरि की प्राप्ति हो सकती है। क्या भाव है? बोले श्रीमद भागवत के जो अर्थ है रसिक भक्त जैसे आप लोगों के बीच में बैठकर उन अर्थों का आस्वादन करना यही हरि प्राप्ति का साधन है, यही हरि प्राप्ति का साधन है। इसलिए ढोल नगाड़ा क्या करेगा? यदि हमारे कान में ये बात नहीं गई, ये राघवाचार्य की बात कहते हैं कि यदि अर्थार्पण हम नहीं करते तो भक्ति हमारी सुस्त रहती है। इसका अर्थ होता है यदि हरि की कृपा से हमको धन की प्राप्ति हुई है और हम उस लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगाने में समर्थ है तो देना चाहिए। मंदिर से धन लेना तो दूर की बात, हाँ लेने के लिए वही जाएंगे जितने कम से कम कर सकता है। कोई सेना कोई सेवक सेवा करने के लिए आया है, बस प्राण धारण मात्र के लिए वो मंदिर से ले साई कितना दीजिए जान कुकुर से हमें कितना दे, बस एक कपड़ा बस थोड़ा सा भोजन हो जाए फिर मैं 3 लाख काम की सेवा करूँ। अच्छा सेवक और आगे चलेगा आगे कश्यप मुनि अपनी पत्नी से भी कहते हैं वित्त साक्षम, जो लोग वित्त देने में सफलता करते हैं उनके प्रति बड़ी प्रसन्न नहीं होती। जो भी धन धन में प्राप्त हुआ है वो हरि की इच्छा से हुआ है। आप देखोगे बलि महाराज ने दे दिया इंद्र पद दे दिया सुतल लोक मिला और सुतल लोक केवल नहीं मिला नहीं मिला सावरणी मन्वंतर में तो पुनः इंद्र बन गया। क्या कहता है सामान्य नीति के रूप में कवि संत ने कहा है दान देने से धनना घटी नदीना घटी नहीं। बोले दान दिए से है दान देने से धन घटता नहीं है। बोले उदाहरण क्या है, बोले नदी को देख लो, नदी से ना जाने कितने प्यासे आकर के प्यास बुझा के चले जाते हैं पर नदी वैसी की वैसी जल की धारा अविरत प्रवाहित होती है। और वो दान को जब हम साक्षात हर को देते हैं फिर तो कहना क्या है तो आनंद को पाए कर देते हैं। ऐसा भागवत में लिखा हुआ है यदि कोई व्यक्ति अपने दान को अनंत बनाना चाहता है, ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात सहदेव कहता है उस राजस्थीय यज्ञ मंडप में सहदेव जी की बात है, कहते हैं जो अपने दान को अनंत बनाना चाहता है उनको चाहे तो अनंत को पाए। इसलिए यहाँ पर आप बलि महात्मा सर्वात्मा कायेन मनसा वाचा शास्त्र कहता है भोजन नृत्यंत मित्र है ब्राह्मण को केवल पता चले कि वहां पर मीठी मीठी खीर मिल रही है पूरी आलू अगस्त जैसे काले मेघों को काले बादलों को देकर के मोर अपने पीठ को विस्तार करके नृत्य करता है ऐसे ही भंडारा का नाम सुनकर के ब्राह्मण नृत्य करता है। फिर उनको सब कुछ देकर के वो सेवा करें तो ब्राह्मण कितने प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों ने कहा बलि आपको क्या चाहिए, बहुत प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणा भगव प्रिय माना आया जैन विश्व जिता प्रणाम इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। बलि महाराज से बोले बलि तुमको क्या चाहिए। बलि महाराज काल विलंब की बिना है ब्राह्मणों है गुरुदेव यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे विश्व विजय बना दीजिए, मैं विश्व पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। भाई दोनों में तो रहता है ना, कभी असुर बैठते हैं तो कभी देवता बैठते हैं, अब देवताओं ने छीन लिया है विश्व को, इंद्रपद इंद्र इंद्र भी बैठे हुए हैं। देखो इंद्रपद इंद्र बैठे हुए माने वो विश्व के चक्रवर्ती, क्या मैं बताऊँ विश्व विश्व की जो राजधानी है जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है ऐसे विश्व की राजधानी अमरावती है। उस अमरावती पुरी में इंद्र बैठकर के विश्व का शासन तंत्र चलाते हैं। बलि महाराज जी ने कहा हमको विश्व नेता बना दो, हमको विश्व का चक्रवर्ती बना दो। ब्राह्मण का भगवान का नौकरी तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कहेगा और ये कार्य नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं। छोटा सा बालक ने कहा आज के सातवें दिन कक्षों के काटने से तेरी मौत हो गई। छोटा सा बालक, कोई तपस्या नहीं की, कोई कुछ भी नहीं। ऋषि संत मुनि ने कह दिया कि यहाँ वर्षा होगी, वर्षा होगी। तो ब्राह्मण का वाक्य कभी झूठा नहीं होता। प्रभुपाद जी कहते हैं वो शिवलिंग के बाद ही जो ब्राह्मण झूठे बन गए, ताकत मिल गई। वास्तव में जो व्यक्ति 12 वर्ष तक अखंड रूप में सत्य बोलता है तो उनकी वाणी सत्य हो जाती है। भक्त जब निरंतर हरिनाम का जप करते हैं, क्योंकि हरिनाम एक परम शक्ति है, इसलिए उनकी वाणी शक्ति हो जाती है। वसुदेव महान शक्तिशाली थे, भगवान की पिता शक्ति। तो ब्राह्मणों ने कहा कोई बात नहीं है, हाँ हम आपको विश्व नेता कर देंगे, पर उनके लिए एक यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। तो सब रघुवंशी ब्राह्मण मिलकर के बलि को सर्व राज्य देने के लिए विश्व यज्ञ का आयोजन इतना सफल हुआ विचित्र किस्म के वस्तु होना से प्राप्त हुई बड़ी अग्निदेव सबको देने में समर्थ है। जिस रथ पर जिस धनुष अर्जुन चलाते हैं उस रथ उस धनुष को भी अग्निदेव नहीं दिया था, रथ को भी अग्निदेव नहीं दिया था। अब यहाँ एक ईसा इतना बढ़िया यज्ञ हो गया, यज्ञ से संपन्न हो रहा है, ब्राह्मणों का मंत्र उच्चारण इतना सफल रहा, उस यज्ञ से बलि महाराज जी को क्या क्या मिल पाते थे। जिगीषा मानम विधिना अभिषिच्य महावी से महानुभाव, वो महानुभाव ब्राह्मण गण उस विश्व विजयी इच्छा को लेकर के जो महान यज्ञ की शरीर यज्ञ का आयोजन कराया और उस यज्ञ में जो मंत्र पाठ किया, हवन किया, सफल हुआ, वो यज्ञ भगवान को अग्निदेव प्रसन्न होकर के बलि महाराज के प्रसन्न ततो रथ कंचन पट्ट लब्धो हया सहर्या सतुरंग वर्णा। एक इतना सुंदर चमचमाता हुआ रथ मिला जिसके रथ के चारों ओर सुवर्ण के वस्त्र घिरे हुए थे, सुवर्ण के कपड़े थे, सुवर्ण के सोने के समान सोना ही है, सोने के पत्रे से वो चारों ओर मढ़ा हुआ था रथ, ऐसा रथ मिला। और उसमें जो घोड़े जुटे हुए थे वो भी एक दिव्य घोड़े थे। उस घोड़े कैसे थे बोले इंद्र के जैसे घोड़े थे, बलि मारे थे वो ऐसे घोड़े प्राप्त हुए। बोले इंद्र के घोड़े कैसे हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हरिया सतु रंग बरना ही बरना। हरि माने इंद्र, हरि अश्व, इंद्र की जो घोड़े कैसे बरना है बोले हरे रंग के वर्ण वाले घोड़े, ऐसा आचार्यों ने बताया। पर हमारे जो अनुराग उपाय भागवत में उसने पीला रंग लिखा है, और ये हम पीला रंग कैसे लिखा हुआ है, अंग्रेज ने क्या लिखा हुआ है हमने देखा नहीं, परंतु टीकाकारों ने लिखा है कि इंद्र के अश्व हरे रंग के होते हैं। बिना हमारे इस पृथ्वी में हरे रंग के अश्व नहीं मिलते, ये संसार में तरह तरह के अश्व मिलते हैं। एक एक राजा पुत्र एक ने कहा कि भाई हमको ऐसा अश्व चाहिए जिसका कान सफेद हो, है ना, काले सफेद अश्व के काला काले कान हो, ऐसा अश्व चाहिए। विभिन्न किस्म के अश्व संसार में, इंद्र के जो अश्व है वो हरे रंग के हैं, बलि महाराज जी को जो अश्व मिले वो हरे रंग वाले अश्व मिले, भगवान श्री कृष्ण के जो अश्व है वो बिल्कुल सफेद, बिल्कुल एकदम दूध की तरह सफेद। गीता में कहा गया है तथा हस्ते हरे युक्त महते संगमेश माधव पांडव शैव दिव्य संतो प्रगति मह। वहां स्वते हरे युक्ते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं उनमें जो घोड़े बंधे हुए होते हैं उन घोड़ों का रंग हरे हरे रंग के पश्व मिले और कंचन पट्ट नख रथ मिला और ध्वजा क्या था जो ध्वज बंधा हुआ था वो सिंह चिन्हित ध्वज था। सिंह हमारे भारत की परंपरा वास्तव में कितनी बढ़िया है। हम भारत में जन्म लिए संस्कार प्राप्त किए हमको गर्व है पर आज कल के पता नहीं राजनीतिक जो दल है वो शायद भागवता जी नहीं पढ़ते पुराण शास्त्रों का अवलोकन नहीं करते इसलिए उनके मन में बहुत सारे संकल्प पैदा हो जाते हैं। देखो यहाँ पर जो ध्वज मिला है वो ध्वज सिंह चिन्ह पर है ध्वजस्थ सिंधिये में विराजमान हो परीक्षित महाराज जी का जो रथ था उसके रथ पर जो ध्वज था वो ध्वज में भी सिंह चिन्ह था और जो नंदीघोष रथ था अर्जुन पर उस रथ पर जो साक्षात हनुमान जी का आगमन था कपित ध्वज कपित ध्वज सिंह ध्वज पर पता नहीं आजकल तरह तरह की जो पार्टी है उसमें से एक पार्टी है जिसका दृष्टक चिन्ह क्या है झाड़ू कितने बंदा लगता है हमारा हमारा झाड़ू बेकार लगता है सिंह चिन्ह है वरना हाथी चिन्ह कर देता अच्छा होता हाथी घोड़े गाय कितने बढ़िया बढ़िया है। कुछ लोगों का कहना है कि बाघ के बदले गाय के जातीय पशु दे दिया जाए गाय जातीय पशु बने अच्छा है वास्तव में नेशनल एनिमल गाय हो जाए क्या खराब बाघ को बना के क्या फायदा। नमो ब्रह्मण्य देवाय वो ब्राह्मण हिताय भगवान श्री कृष्ण की प्यारी है वो माता यदि वो माता जातीय पशु हो जाती है तो क्या हुआ अच्छा होगा। ये संस्कृति के लोग उदार होते हैं इसलिए हमारे जो मनीषी हुए हैं जो विद्वान हुए हैं वो सब उदार कथन से हुए इतना तक उदार हो गए पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कितनी बार लगभग 15-16 बार पराजित किया दया करके छोड़ दिया मारा ने कितनी उदारता थी इतनी उदारता ठीक नहीं किया उन्होंने उनको मार देना चाहिए लेकिन एक बार जो उसने पकड़ लिया हमारी संस्कृति हमारी परंपरा कितना उदार है सिंह चिन्ह का उसको ध्वजस्थ सिंह न विराजमानो उपासना दास हरी विस्तार और एक धनुष सेना सुंदर धनुष सोने के समान चमचमा चमक धनुष डंडी उसके पूर्व उपलब्ध है उसमें भी सोने का पत्थर बना हुआ तो सब सोना सोना का बिना काम नहीं करता सब सोना आजकल तो लोहा का युग है सोने का इस्तेमाल तो बहुत कम है और साथ साथ तनाव रिक्त कवचम की विद्यम जो अक्सर कर्कश में है जो युद्ध हो जाता है युद्ध करने के लिए धनुष और पीठ में कर्कश होता है और बलि महाराज को दो कर्कश मिले और दो कर्कश इतने विशेष कर्कश थे तो अक्षय अक्षय था उसमें कितना भी बाण निकालो वो बाण से रिक्त नहीं होगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तुणाव रिक्त कवचम से विद्यम और एक दिव्य कवच मिला कवच जो छाती में बनता रहता है कितने सुंदर सुंदर वस्त्र में वस्त्र मिल गई और वो अगले से ही मिले इसीलिए कई लोग इसको विश्वास नहीं करते इसको माइथोलॉजी बोलते हैं परंतु भारतीय सनातनी इसको माइथोलॉजी मित्र नहीं मानता इसको सत्य जानता है वो मंत्र की ताकत पर भरोसा उसका होता है होता है ना। अरे भाई यदि तुमको ज्यादा विश्वास नहीं है कई गांव में जाकर के देखो जब एक पीलिया बीमारी होती है कई लोगों को मंत्र मालूम है तो आपके सामने मंत्र बोलेंगे और आपके सामने जो पानी पीला पीला हो जाएगा और पीलिया बीमारी ठीक हो जाएगी तो छोटा छोटा काम देखो मंत्र की कितनी ताकत कबीराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं, चार वस्तुओं को आप आकलन नहीं कर सकते, उसमें तर्क नहीं लगा सकते, मंत्र, मणि, महोषधि, योग शक्ति, चार वस्तु याद रखें, मंत्र, मणि, महोषधि, योग शक्ति। मंत्र किस तरह से काम करता है आप नहीं कह सकते, तो नहीं कह सकते, उसमें कोई विज्ञान काम नहीं करेगा। और वो मणि किस तरह से आठ बार सोना पैदा करता था कौन कह सकता, उसमें कोई फाड़ करके देखेगा कि सत्रह जिसको जो मणि मिली है उसमें से आठ बार सोना पैदा होता है, तो नहीं होता। तो कैसे पैदा करती है कोई मणि, मणि की विशेषता, महोषधि कुछ कुछ औषधियां होती है वो किस तरह से काम करती है आप उसमें तर्क से आपको प्राप्त नहीं होता। और योग शक्तियां, योग की जो शक्ति है अणिमा लगे ये किस तरह से काम करती है आप उसमें विज्ञान नहीं लगा सकते। कविराज गोस्वामी जब सृष्टि की प्रक्रिया बताते हैं तो इसको बताते हैं, ये चार वस्तु जैसे मणि आठ बार सोना पैदा करके अविकृत रहती है, ऐसे ही भगवान इसी विश्व को बना करके भी अविकृत होते हैं। इसलिए भगवान निर्गुण है, निर्विकार है, विकार से रहते हैं। यद्यपि ये जगत विकार युक्त है पर हरि निर्विकार है, उनमें परिवर्तन है, अनाधिकार से जो थे आज भी वही है, आज भी वही है, वजन अंदर को कोटि का मंदिर है। इसलिए हम सब भक्तों को विनम्रता से उनको विश्वास के साथ ग्रहण कर लेना चाहिए। ये सब मिलने के बाद उस समय प्रहलाद महाराज जी जाकर के क्या किए, पिता महस्तस्य गदौ च माला अम्लान पुष्पां जलजं च सुत्रः। पितामह बलि महाराज के पिता का नाम है विरोचन, विरोचन के पिता का नाम है प्रहलाद, प्रहलाद के पिता का नाम है हिरण्यकश्यप के पिता का नाम है कश्यप, कश्यप के पिता का नाम है मरीचि, मरीचि के पिता का नाम है ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पिता का नाम है राजी। इस मौके से पूछना चाहिए पिता महा इनका भी सब पिता दादाजी नाना जी बोलते हैं, तो दादाजी वहां पहुंच गए, हाँ मेरा बेटा जा रहा है किसी भी करने के लिए हमको कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो पिता माँ ने क्या दिया, पिता महत्स्य गदौ च माला अम्लान पुष्पां जलजं च सुत्रः। पिता महा प्रहलाद जी ने उनको एक अम्लान माला दी, वैजयंती माला, विजय की माला थी, जिस माला के पुष्प मुरझाते नहीं, सूखते नहीं, बिल्कुल गंध नहीं है, गंध नहीं कि कोमल का नहीं, एक कमल को लोग कोमल बोलते हैं, लेकिन इसको देखो शुभ है कितना हार है, बहुत शुष्क नीरस है, कठोर है, इसमें जब जल का समावेश होता है बड़ा कोमल होता है, कमल कोमल होता है पर ये कमल कोमल नहीं है, ये शुष्क कमल कठोर है। लेकिन जो वैजयंती माला पहनाई पड़ा बड़ा बड़ी सुंदर माला, हमारे गुरु महाराज प्रश्न उठाते हैं, प्रहलाद महाराज जी जैसे सौदर्शी व्यक्ति इनको माला पहनाने क्यों आ गए, क्या कारण था, और थोड़ा सा कुछ हो जाए भक्तों को कहा जाएगा अरे सौदर्शी हो जाए, बिल्कुल क्षमता है, यहाँ तक कि जो बदमाश भी है वो आपको आपको उपदेश करना चालू कर दे, अरे भक्त को समझ होता है तो उसका पक्ष कर देते हैं, समाह सत्र जब स्त्री का तथा माना तो मात्र बिल्कुल गीता का श्लोक एकदम बुलेट की तरह बोलेगा, लेकिन मेरे प्रभु क्या गुरु महाराज कहते हैं भाई हो ना हो प्रहलाद महाराज उनके नाती के होते थे होते और अपने अपना वंश का एक रिश्ता होता है। तो प्रहलाद महाराज जी का ये वंशधर है, यद्यपि देवताओं में कोई अनुभव नहीं था पर फिर भी प्रहलाद महाराज बलि को इसीलिए सपोर्ट कर रहे थे, पक्ष कर रहे थे क्योंकि बलि जैसे मान लीजिए आप राजनीति में देखिए कई लोग अच्छे होते हैं मान लीजिए कोई राजनीतिक दल मान लीजिए बीजेपी और कांग्रेस, उसमें बीजेपी में कोई अच्छा व्यक्ति भी खड़ा हुआ है पर कांग्रेस वाला जो है वो जानता है वो अच्छा आदमी है लेकिन उसको वोट नहीं देगा, कहेगा नहीं वो हमारी पार्टी का नहीं है इसलिए हम नहीं देंगे, ऐसा होता है। वो जानता है उसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, सबको ठीक ठाक है क्योंकि वो हमारी पार्टी में नहीं है इसलिए हम उसको वोट देंगे। पर प्रहलाद महाराज भाई हमारे पोता है, हमारे व्यक्ति वंश का है, इसलिए उन्होंने उनको वैजयंती माला दी। इसका अर्थ होता है कि तुम जाओ इंद्र पर विजय पाओ, इसका स्पष्ट ध्वनि अर्थ यही है। जल जम और शुक्राचार्य ने उनको एक दिव्य संत दिया, जाओ बलि इंद्र को चुनौती दो शंख बजा के। एवं सभी प्रार्जित योद्धार्थ ते कल्पित शस्त्रयनो भगवान। इस प्रकार से युद्ध की अभिलाषा को लेकर जब बलि महाराज धनुष तरकस माला शंख से सुसज्जित होकर उस दिव्य सुवर्ण रथ पर आरूढ़ हो गए उस समय ब्राह्मणों ने स्वस्थ बात की, तुम्हारे पास सब कुछ हो जाए पर विजय तुमको वैजयंती माला देकर के स्वीकार नहीं करेगी, क्यों गौरवों का आशीर्वाद नहीं है। रघुवंशी ब्राह्मण बलि को सौ दिए पर स्वस्ति वाचन के बिना उनको छोड़े नहीं। स्वस्ति वाचन माने तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम जिस लक्ष्य को प्राप्त करने को तो जा रहे हो तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त हो जाए, इसको आशीर्वाद। भारतीय परंपरा में कोई नई बहू घूमर दान करके उस श्वास के पास जाती है और वो श्वास के चरण को स्पर्श करती है और कांपता हुआ हाथ उस बुढ़िया का हाथ जो उस बहू का मस्तक स्पर्श करता है दौलत को प्राप्त हो जाए। जब पिता माता का आशीर्वाद किसी बेटे को प्राप्त होता है तो वो बेटा ही विश्व के लिए होता है। सबका अनुभव जिस किसने अपने गुरुजनों का निरादर किया है उसका जीवन में कहीं सुख है नहीं, यह काल परकाल यही भी सुख नहीं है, परकाल में क्या नहीं है मेरे मित्र कहीं नहीं। जब भारत की दुर्दशा थी उस समय महाराष्ट्र के प्रांत में चार संत एक साथ थे, ज्ञानदेव नामदेव तुकाराम एकनाथ रामदास कई संत और उस समय मुसलमानों का पठानों का बड़ा आक्रमण था और संत रामदास पूरे भारत भ्रमण किए, भारत के प्रति उनका बहुत बड़ा व्यवहार किया, पीड़ा हो रही थी क्या हो रहा है। और उस समय तुकाराम जी महाराज हमेशा नाम प्रेम में डूबे रहते जय जय विठल विठल विठल। उस समय शिवाजी महाराज उनसे मिले बोले हे महाराज हमारा घर संत तुकाराम ने कहा तुम्हारे गुरु कौन से हैं, तुमको दीक्षा देंगे, तुम प्रतीक्षा करो। आगे चल के गोदावरी में तपस्या करके तपपुत्र शरीर लेकर के भारत भ्रमण करने के उपरांत जब रामदास जी महाराष्ट्र को वापस लौटे, छत्रपति शिवाजी उनसे मिलने गए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। ऐसे ही स्वप्न में मगर शिवा भजन का समय दे, उन्होंने उनको जो नारियल दिया, कुछ मिट्टी दी थी, कुछ मिट्टी दी थी, नारियल का अर्थ होता है आशीर्वाद दिया, कुछ मिट्टी का अर्थ होता है तुम भारत की रक्षा कर, विदेशी आक्रांताओं से भारत की रक्षा तुम्हारा पहला कर सकते हो, जहां शिवा तुम्हारे ऊपर मेरा अचल आशीर्वाद। उन्होंने उनको दस उपदेश दिया, जैसे न्यू टेस्टामेंट में बाइबल में लिखा हुआ है। संत रामदास ने शिवाजी को पहला उपदेश दिया, आशीर्वाद या उपदेश दिया, जो विदेशी भारत की संस्कृति पर आक्रमण करता है उनको बेरहम से दमन करो, उन पर दया मत करो, उनको दमन करो, उनको मार करो। उस समय उस महाराष्ट्र का आशीर्वाद लेकर के जब शिवाजी गए और उन्होंने अफजल खान की कत्ल कर दी और आदिल खान को मारा। इसलिए शिवाजी का नाम सुनते ही मुगल के लोग थरथरा गए। लक्ष्मण जब गए सुमित्रा ने उनको आशीर्वाद दिया, बेटा तुम अयोध्या किसको मानते हो, अयोध्या वही है जहां राम है। उन्होंने एक दोहा में बताया, अब था जहां राम निवास हो दिवस तहां जहां भानो प्रकाश। हे बेटा, जहां सूर्य की रोशनी हो वही दिन है और जहां भगवान राम हो वही अयोध्या। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, जाओ श्री राम की सेवा करो। इसलिए आशीर्वाद का बड़ा महत्व है। और एक उदाहरण से आप भक्तों में समझ सकते हैं, कर्ण एवं अर्जुन दोनों कुंती के पुत्र थे, दोनों क्षत्रिय थे, दोनों महान पराक्रमी थे, दोनों तेजस्वी थे, दोनों ओजस्वी थे, दोनों धनुर्धारी भी थे, बल्कि कर्ण 20 हो सकता है, अर्जुन 19। कर्ण किसी भी मामले में अर्जुन से कम नहीं था, लेकिन कर्ण का एक महान दो तीन अवगुण थे। उनका एक अवगुण था अर्जुन टकाटक सामने बोलता था, दूसरे का अपमान करता था और गुरुजनों को सम्मान नहीं देता था। कर्ण का ये अवगुण था, इसी के चलते उनको पराजय का सामना करना पड़ा। और अर्जुन दयालु स्वभाव के थे, इसलिए तो नाम था अर्जुन, आशीर्वाद की कामना करते थे। यद्यपि महाराज बलि को सब कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन भृगुवंशी ब्राह्मण उनको आशीर्वाद दिए, जाओ बेटा स्त्री कल्पित स्वस्थ यमोक प्राण, जाओ बेटा तुम्हारा कल्याण। ओम स्वस्ति नो गोविंद, स्वस्ति नो सुतानंद, स्वस्ति नो वासुदेव विष्णु दधातु। हमारे स्वस्थ अंदर से है स्वस्थी वाचक होने के बाद बलि महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रदक्षिणा की उन ब्राह्मणों की और उस रथ की, सबकी परिक्रमा तक प्रणाम और प्रणाम किया। हे पितामह, हे ब्राह्मण, हे गुरुदेव, आप हमें आशीर्वाद करो। ऐसा नियम यही है कि प्रणाम करते समय बोला जाए। प्रणाम शब्द का अर्थ होता है प्रकर्षण, यानी कि झुक जाना, जिसके सामने जो झुकना होता है उसी को प्रणाम करो। झुके बिना क्या होता है? हमारे हिंदू में तो कहा होता है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, और कर तो मुर्गे की पहचान, अकड़ता वही है जो मुर्गा है, मुर्गा सीधा होता है, वो टेढ़ा नहीं होता, लेकिन झुकता वही जो जिसमें जान होती है। नमंती कलिनो बच्चा, नमंती कुलिनो जनाना, विद्वान झुकता है, फलदार वृक्ष झुकते हैं, लेकिन अकड़ करके कई लोग सारे भाई तुम्हारी अकड़ तुम्हारी एक समय सब जकड़ जाए, संधियां टाइट हो जाए, कुछ नहीं कर सकते, नस नस कृतक प्रणाम, उन्होंने प्रणाम किया। अष्टांग प्रणाम का एक नियम है, वो वाणी से बोले, यदि श्री गौ मिताई को प्रणाम करते हैं बोलना चाहिए, आजान लंबित भूजो पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे करुणा के अवतार, हम आपके चरण कमलों का वंदन करते हैं। बोलना चाहिए, अष्टांग प्रणाम जो हम करते हैं दंडवत, उसमें वाणी से बोलना एक 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 अंग है। जो वाणी से नहीं बोलता एकदम करता नहीं होता, उसमें सप्तांग हो जाए, बोलना चाहिए। कृतक प्रणाम प्रहलादम आमंत्र नमस्कार, विशेष रूप से प्रहलाद जी को नमन किया, ये पिता होते ही तो होते हैं ना, वो दादा के पास ज्यादा जाते हैं, हमारे अग्रवाल भी बैठे हैं, उनकी पोती उनको छोड़ती नहीं, दादा पोता का रिश्ता बड़ा अच्छा होता है। एक बार अकबर की सभा में अकबर ने एक बात कही, तो किसी को समझ नहीं आ रहा, उसने कहा अकबर ने, आज एक शख्स ने मेरी दाढ़ी फेंक दी, उसका हम दंड विधान करेंगे, कौन है पहने लगे महाराज वो मुझापना उसको तो बिल्कुल अभी सारे मार दे, किसने कहा सिरों पर बिठा दो, किसने कुछ किसने कुछ किसने कुछ, लेकिन बीरबल जो आपकी दाढ़ी को कौन फेंक सकता है, आपके पोते के थ्रू आपके पोता नहीं आपकी दाढ़ी को, वास्तव में राजा की दाढ़ी कौन फेंक सकता है, उसको पोता ही फेंक देगा, कौन फेंक सकता, विशेष बात है पिता और पिता महत्व का रिश्ता बढ़िया है। प्रहलादम आमंत्र नमस्कार, प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों में नमस्कार किया, तो नमस्कार दो बार आया, ब्राह्मणों को नमस्कार किया, प्रणाम किया, प्रदक्षिण की, और पितामह से आशीर्वाद लेकर के बलि महाराज रथारुये अथारुय रथम दिव्यम त्रिभुवनम सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अब ये सामान्य रथ के नहीं था, बलि महाराज महारथ हुए, बोले महारथ होकर के उस भृगुदत्त रथ पर आरूढ़ हुए, दिव्य माला, दिव्य कवच, दिव्य धन मनोज, दिव्य खड्ग, दिव्य तर्कश, सब दिव्य, सब दिव्य, और वो आरोहण करके वो चले, और मंगत बंधा हुआ है, कंकण है, कुंडल झिलमिला रहा है, सब कुछ सुंदर भाव में सज्जित होकर के एक वीर जनता की भांति बलि महाराज वैसे ही शोभायमान होने लगे जैसे ताराओं के बीच में चंद्रमा की शोभा होती है। दिव्य आभूषणों से सुसज्जित होकर बलि महाराज चले इंद्रपुर के लिए, फलक्ष भी सालुखे जय चतुपते जितने असुर सेना थी सबको लेकर के बलि महाराज था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मानो बलि महाराज अपने प्रचंड तेज से अपने आभा प्रभा से इंद्रपुल को पी जाएंगे, निगल जाएंगे। उस महान तेज का सामना करना किसी विक्रम का सामर्थ्य इस प्रकार से जाकर वो इंद्रपुर में पहुंच गए और इंद्रपुर में पहुंचकर जब अपना संत बजाया संत दिव्य संतोग उससे पहले सुखदेव गोस्वामी 10 श्लोक में इंद्रपुर का वर्णन करते हैं। इंद्रपुर का वर्णन कोई आज तक नहीं था लेकिन श्रीधर स्वामी पिता के तौर पर इंद्रपुरी का वर्णन करना बहुत जरूरी है। क्यों? इंद्रपुरी की शोभा इंद्रपुरी की संपन्नता सुनने के बाद व्यक्ति के मन में ये लालसा हो जाएगी हम भी जाएं। लेकिन यहाँ प्रसंग में दिखाया जाएगा इतने संपन्न इंद्रपुरी है स्वर्गपुरी है पर बलि महाराज ने उस पर चढ़ाई कर दी और इंद्र को भागना पड़ा। श्रीधर स्वामी कहते हैं यहाँ जो वर्णन हो रहा है यहाँ अनुकूल भाव में नहीं किया जा रहा है कि भाई तुमको भी स्वर्ग जाना चाहिए, नहीं। स्वर्ग का वर्णन इसीलिए किया जा रहा है कि इतनी संपन्नता के भीतर भी प्रत्येक व्यक्ति मनस्तात्व तो उद्विग्न है, चिंता से उद्विग्न होता है क्या करना है क्या करना है क्या इंद्र को कहते हैं देवताओं की वो जो राजधानी थी इंद्र की राजधानी उसका नाम अमरावती सुंदर सुंदर वन उद्यान से ऐसा कहा गया है रम्या उपवन उद्यान है। देखो उपवन कहने से चलता फिर उद्यान क्यों कहे बोले उपवन उसको कहते हैं जहाँ पर फूलदार पेड़ ज्यादा होते हैं और उद्यान उसको कहते हैं जहाँ पर केवल वृक्ष ज्यादा होते हैं जिसमें फल हो ना हो कोई जरूरी नहीं है ना। ऐसे कुछ कुछ पेड़ है जिसमें फल नहीं लगते मान लीजिए देवदार हो खंडव हो खंडव समझते खंडव खंडव जैसे खंडव वन है नाम सुनो खंडव वन दिल्ली का उसको उनको मिला था खंडव वन उसको तो इंद्रप्रस्थ बनाया खंडव पेड़ हमारे मंदिर में भी है। संस्कृत में खंडव कहते हैं कि हमारे जो सूचना केंद्र है ना हमारी ऑफिस लाइफ नंबर की जो ऑफिस है लाइफ नंबर कार्यालय और सूचना केंद्र तो दोनों के बीच में एक रिक्शा देखा है उस कोने में मंदिर के कोने में है ना उस वृक्ष का नाम है खंडव और देसी भाषा में कहते हैं छाव पतली पतली है ना पतली उसकी जब हवा चलती है बहुत आवाज देता है ये इन पेड़ों में फल नहीं होते देवदार हैं ये हैं चीड़ के पेड़ हैं और भी कई ऐसे पेड़ हैं जिनमें फल नहीं होते लेकिन छायेदार होते हैं खजूर के पेड़ है उसमें छाया नहीं क्योंकि संत ने कहा कि खजूर के पेड़ हो तो क्या फायदा इतना लंबा हो गया फल ला गया तो दूर और फल भी लगा है छोटे छोटे और वो भी बहुत दूर है और छाया भी नहीं है फल भी बहुत लागे दूर है तो ऐसा जीवन में क्या फायदा है। तो इंद्र का जो उपवन था जो अमरावती उसमें वन उपवन था उद्यान भी था और बहुत सुंदर सुंदर उसमें भिन्न भिन्न पक्षी थे हंस कारंडव पारावत वहाँ कौवा नहीं होते हमारे महाराज कहते हैं कौवे कभी नहीं होते पता नहीं होते कौवे तो बिल्कुल नहीं दिखाई और वहाँ जो दीवार जो है खिड़कियाँ हैं वो सब मणि गुप्ता से सज देते हैं झालरें मोतियों की लगती है चंदमा मोतियों की झालर में सोने चांदी हीरे मोती माणिक कहाँ कहाँ वर्णन करे आकाश गंगा उनकी परीक्षा है परिधि की तरह ऐसा वर्णन है रुक्म पट्ट पाटीश्वर द्वारे फटिक गोपुर और फटिक से गोपुर बनता है द्वार बनता है स्वर्ग लोक की जो सजावट है वो हमारी कल्पना से बाहर है। और कितने विमान हैं, हमारे महाराज कहते हैं 10 करोड़ विमान स्वर्ग लोक। हमारे पूरे विश्व में विमानों की संख्या यदि गिनती किया जाए 10 करोड़ में इतने विमान कहा। और यहाँ हवाई अड्डा चाहिए, वहां पर हवाई अड्डा नहीं चाहिए, वहां मन की गति से विमान चलते हैं और मन जहाँ कहेगा वहीं रुक जाता है। और ये सब विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित है। सभा के स्थान खेल के चबूतरे और रथ चलाने के बड़े बड़े मार्ग से सभा में 10 करोड़ विमान उसमें सर्वदा विद्यमान रहते हैं। और मौलियों के बड़े बड़े चौराहे एवं हीरे और मुंडों की बेदियां बनी हुई है। ये तो सब अब महल मंदिर की बात आ रही है, इंसान कैसे इंसान की बात पहले, अब पहले देवियों की बात आ रही है। दुनिया की सूर्य गोस्वामी कहते हैं यत्र नित्य वयो रूपा श्यामा बीरज वाससा भाजन्ते रूपवन् नायो यार्चि भीरिवन् नयः। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वहां की जो स्त्रियां हैं यत्र नित्य वयो रूपा है, जैसे स्वर्ग के जो लोग हैं वहां की ऐसे विचित्र स्थिति है, वहां बुढ़ापा नहीं आता, इसकी आधुनिकता के सफेद में आज पूरा काले काले रहते हैं, बिल्कुल केस नहीं पड़ता। दाढ़ी मुझे कभी नहीं होती, पता नहीं दाढ़ी मुझे होती है, लेकिन देवताओं के प्राय नहीं होते लगता है। लेकिन स्त्रियों का वर्णन आया है नित्य वयो रूपा, बोला हमेशा 16 साल की किशोरी रहती है, यानी कि 16 साल की युवती जैसी रहती है वहां की स्त्रियां, वहां की स्त्रियां सदैव वैसी रहती है, वहां की स्त्री वृद्धा नहीं होती, जितनी भी स्त्रियां हैं सब 16 साल, यहाँ 15 न चाहिए, श्रीधर स्वामी ने लिखा है 16 साल। श्यामा श्यामा शब्द का अर्थ काली है, मैं क्या वहां के सर्वे तो सुना कि काली है तो साउथ अफ्रीका नहीं है, ऐसा नहीं, श्यामा शब्द का अर्थ करते हैं निश्चित काले भवित उत्तर उसमें काले सुशीतला, बोले वहां की जो स्त्रियां है वो एयर कंडीशन टाइप की, शीत ताप नियंत्रित शरीर की जाते हैं, बोले शीत काल में गर्मी देते हैं देती हैं और गर्मी दिनों में शीतलता देती है, शीत काले भवित उत्तना उसमें काले सुशीतला और शरीर उनका बड़ा ही डील डोल रहता है, सुंदर सुंदर उनके नेत्र हैं, उनके चिबुक हैं, उनका कपोल है, उनके केश हैं, उनके वक्षस्थल हैं, उनके जांघे हैं, उनके चरण हैं, सब अनुपात के अनुसार सुंदर है, बिल्कुल हम अपने मत के बुद्धि से जितनी कल्पना कर सकते उतनी कल्पना होगा वहां की स्त्री है। और कपड़े क्या पहनते हैं, नित्य वीरज वास होता है, ऐसी साड़ी पहनते हैं जो कभी गंदी नहीं होती। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया ने सीता जी को अम्लान वस्त्र दिया जो कभी जिसमें मल नहीं लगता, कितना सुंदर है अम्लान वस्त्र, वो साड़ी में कभी धूल नहीं लगती, कभी धीरज 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 माने रज नहीं है, धूल नहीं है, मैला नहीं है। अरे भाई शरीर से ही मैल नहीं है तो साड़ी में कहां से मैल है, पर यहां तो हमारे कपड़े केवल शरीर से ही गंदे हो जाते, आप एक दिन कपड़े ना धो कितनी गंदगी है, सबसे गंदी स्थिति है हमारे ये शरीर, सबसे संसार में है सबसे गंदी चीज यदि कुछ है वो है हमारा इबादत। भगवान राम ने कहा पंच रचित अति अधम शरीर चित्त जल पाप गगन समीरा, पंच रचित अति अधम अति अधम अधम शरीर मल मूत्र पी खून उसके शरीर में, इसी से ही दुर्गंध है, दुर्गंध बाहर में है ना, इससे उसे चाहे जिस समय को मिस यूनिवर्स हो या उसके नाक से चमेली की दुर्गंध निकलेगी। लेकिन नवद्वार है कि नवद्वार से कभी सुगंधी नहीं निकलेगी, केवल जिंदगी का खराब होता है और यहाँ के मध्य लोग के स्त्रियों को तो ब्रह्म हत्या का दोष है, वो तो हर माह अशुद्ध होती है। तो वहाँ की स्वर्ग की स्त्रियाँ बिल्कुल अशुद्ध नहीं होती, नित्य विराजमान राजन्ते रूपवत कार्यो और अपरूप अपरूप सौंदर्य लेकर के हमेशा वहां रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे अग्नि के लपटे हैं, अग्नि की तरह सुंदर दिखती है। स्त्री के सब भ्रष्ट अवसौंदी का सजान और वहां की स्त्रियां जब केश बांधती हैं किसी शिखा में उनकी जुड़ा में सौगंधिक कमल को बांधती है। इधर हमारे उत्तर भारत में ये रिवाज नहीं है पर दक्षिण भारत में ये प्रथा है। दक्षिण भारत की जितनी स्त्रियां हैं वो अपनी जुड़ा में प्राय केश को पुष्प को बांध करके गुप्त करके रखती है। हम तो ये समझते हैं कि लगता है कि दक्षिण भारत में भगवान की सेवा के लिए जितने फूल नहीं लगते होंगे तो स्त्रियों के लिए। आप दूसरा करके देखिए तो हर गाँव में थोड़ी ना मंदिर है, मंदिर मान लीजिए हो भी गया एक आदमी नहीं होगा, भगवान की प्रतिमा एक आदमी होगी लेकिन घर घर में स्त्री है, एक स्त्री नहीं दो चार स्त्री, उनकी माँ होगी, उनकी पत्नी होगी, उनकी बेटी होगी, उनकी पोती होगी। मान लीजिए एक एक हिसाब करें, माँ पत्नी बेटी पोती मान लीजिए, और चारों के लिए कितने फूल चाहिए, सब फूल से श्रृंगार करती है। और स्वर्ग की स्त्रियां बिल्कुल अपनी जुड़ा में फूल बांध करके सौगंधिक कमल बांधती है। यत्रा मूर्धम उपादाय मार्ग आवती मारुतः, और उन स्त्रियों के जुड़े में जो सौगंधिक कमल बंधे हुए हैं उनका उनकी सुगंधि को लेकर के हमेशा हवा चलती है, सुगंधि हवा, उनको घर में एयर रिफ्रेशर की जरूरत नहीं है। रजनीगंधा छोड़ो, चमेली छोड़ो, गेंदा छोड़ो, हवा इतनी सुगंधित हो जाती है कि वातावरण बिल्कुल स्वच्छ ठीक ठाक रहता है। देवताओं के जुड़े से गिरे हुए नवीन सौगंधित पुष्पों की सुगंधि लेकर वहां के मार्ग में मंद मंद हवा चलती रहती है। और क्या है, स्वर्ग लोक में कभी भी टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता, यहाँ पर गर्मी के अलावा कुछ नहीं। वृंदावन में 6 महीना गर्मी और 4 महीने ठंड, हड्डी तोड़ने वाली ठंड और भीतर सुखाने वाली गर्मी है ना। पर स्वर्ग लोक में हमेशा ना अति उष्ण ना अति शीतल, शीतल ना अति शीतल, पर फिर भी वहां की स्त्रियां इतनी सुकुमारी है, सुकुमारी माने जिनके अंग अत्यंत सुकुमार है, कोमल है, उन सुकुमारी स्त्रियों को सूर्य की किरणें भी लग जाती है, वो घर में अगरबत्ती जलाती है, अगर अगर जलाती है, उनसे जो धुआं निकलता है वो धुआं बादल बनता है। पर वो में भी बादल है, पर हमारे बादल जैसे वो बादल भी खड़े हैं और वो बादल सूर्य की रोशनी को ढक देती है, चंद्रमा की तरह काम करते हैं बादल, उन बादलों की छाया के साथ साथ सूर्य सुंदर है। वाह, कौन स्वर्ग जाना नहीं चाहेगा बेटा, यहीं से जो अमेरिका जाता है नहीं आता, तो स्वर्ग का इस वर्णन को सुनो, कौन नहीं जाना चाहिए। इसी को तो लेकर के अपने जो दूसरे मतलब वाले लिखा हुआ है, जो इस्लाम के विरोधी है उनकी कत्ल करो तुम्हारे लिए जन्नत, जन्नत का जो वर्णन है उन मूर्खों के लिए तो बहुत बढ़िया, मूर्खों के अभिमान के लिए भी हमारे जितने बड़े बड़े पंडित को तो स्वर्ग जाना चाहते हैं। एक आत्मा स्वर्ग लोगों की आलम, वो स्वर्ग लोग को भोग करने के लिए ही जाते हैं, यज्ञ आदि करके वो जाते हैं। वेद का एक विभाग, कर्म विभाग, उस विभाग के द्वारा व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सुनहरी खिड़कियों से अगर की सुगंध से युक्त सफेद धुआं निकल निकल कर वहां के मार्गों को ढक दिया करता है, उसी मार्ग से देवान बनाए जाती है। वाह, कौन नहीं जाना चाहिए, एक बार तो भाई अमेरिका को मन करता है कि एक बार तो जाकर घूम के आ जाए, बस रहना की इच्छा नहीं है, पर एक बार चक्कर तो बड़े बड़े सन्यासी जाते हैं तो हमारी इच्छा क्या होती है। तो यदि अमेरिका जाने की इच्छा होती है तो स्वर्गों में जाने की इच्छा नहीं होती, सब लोग एकदम मजाना मुन्ना जाना होना चाहिए, कभी दाम बाज भी सकता, लेकिन भीतर कुछ कुछ करके सारे दिया जाता है। धनम नहीं है, दे ही धनम, हमको धन दीजिए, दे ही जनम, सब चाहिए। भगवान को निर्मल मन बहुत पसंद, इस प्रकार का भाव है। मोर कबूतर और मोर कलगान करते हैं देवांगनाओं के मधुर संगीत से, वहां सदा ही मंगल छाया रहता है। स्वर्ग लोक में कोई काम नहीं करता, इसलिए उसको भोगस्थल बोलते हैं, भारत भूमि कर्म स्थल। स्वर्गलोक में क्या वाद्य बजते हैं, राजा भी वहां बजते हैं बढ़िया, क्या मृदंग शंख ननक कुंभ भी स्वनी सकाल वीणा मुरजासी वेणु भी। बोले स्वर्गलोक में मृदंग शंख नगाड़े ढोल वीणा बंसी मंजीरे बजती रहे, मृदंग जो है यहाँ का नहीं वो स्वर्ग का है। मृदंग शंखा ननक मृदंग शंखा नक दुंदु भी स्वने ही नगाड़े, वो बड़े बड़े थे सावधान बड़े बड़े सकाल वीणा मुरजस्ती वेणु भी सकता है भगवान भावग्राही को सब लोग। अरे भाई भावग्राही तो है पर राग रागिणी में गाने के लिए थोड़ी ना मना किया। सनातन गोस्वामी ने लिखा है गीत प्रिय श्री कृष्ण को गीत स्तुतियां बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए तो हमारे जितने आचार्य हुए सब गीत जाकर में लिखे, ये भागवत जी के गीत है सबू गीत सुखा देवी सुख सनक, इन्होंने सब भागवत को गाया ही है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भागवत को गाते थे, गदाधर भट्ट गोस्वामी भागवत को गाते थे, हम लोग अपने शक्ति भर गा ही रहे हैं गीत। तो स्वर्ग लोक में सताल वीणा बढ़िया से ताल मान से बैंक वीणा बजेगी बांसुरी बजेगी, अरे भाई ताल के राग रागनी में गंधर्व अक्षरायण भागवत उपदेवा यहीं पर जितना ताल मान कटता है सब यहीं पर कटता, कोई बेसुरा गाता है ना, यहाँ सारा बेसुरा था, बाकी क्या है उष्ट्रायाम लघु याद आ गए थे कि लोग कहते हैं कि मजा की बात है उष्ट्रायाम लघु बेलायाम वर्धवास से गायता एको एक प्रशंसन की अहोरूपम अहोरा पहुंचा। बोले एक बार वधों का उसकी शादी में गधे कैसे बराती होकर के गायक बधैया होकर चले, तो गधे जब गाएगा आप लोग जानते हैं गधा जब रेखता है तो कितना आनंद होता है ना, तो ऊंट की बड़ी शादी हो गई तो वहाँ गधे जब बराती में चले तो कुछ ना गाना गाना चलना चाहिए ना, तो जितने गधे सब रेखना चाहिए तो वहाँ जितने ऊंट भी रहते बोले वाह 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 आपकी आवाज में क्या करंट है। सबको मोहित करता है। मैं आप क्या हालात करते हैं, क्या रहा है, और मूर्ख को देखकर के गहरे बताता है आपकी रूप खत्म कैसे है। बंधनों भी आपने जीता पड़ गया, ऊंट के रूप को देखकर के कितने बड़े बड़े दांत हैं, कितने बड़े गबरा गए, और ऊंट को ऊंट की तो सभा होती है, लेकिन गबरा को ऊंट ही अच्छा लगता है, ऊंट को गबरा ही अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि तुम्हारी आवाज में करंट है, वो कहते हैं कि तुम्हारे रूप में भी करंट है। यहाँ केवल यही चलता है, लेकिन वहां तो बिल्कुल ताल माल सब कुछ सम करके अपना है, उपदेव भी तो कहीं गंधर्व को उपदेव कहते हैं, देवता नहीं उपदेव है। जब ये वाद्य यंत्र बजने लगते हैं तो गंधर्व गाते हैं, तो फिर अपराए सब समय पर की सुंदरिया केवल नृत्य करते हैं और क्या करती है, बोले वहां जो आकाश गंगा है, सरोवर है, वहां हमेशा तैरते हैं। इसका मतलब हुआ स्वर्ग की जो धरती जो सुंदरिया है उनको शक्ति चलाना, व्यक्ति पे कूदना, रोसाई बनाना, कोई काम चूल्हा फूकना, केवल केवल गेंद खेलना और वहां सरोवर में स्विमिंग पूल में स्विमिंग पूल में पाश्चात्य जगत में स्विमिंग पूल जाना समस्या सब केवल स्वर्ग की सुंदरी उनका कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, खेलना गाना और संतरण बस। इस बात को जो मूर्ख है बदल करो तुमको मजहब मिले, वो जन्नत मिलेगा उनके लिए, उन मूर्खों के लिए भागवत की किताब। हाँ स्वर्गलोक इतना विशाल है, इतना सुंदर है, स्वर्ग की रमणियां बहुत सुंदर है, नित्य किशोरी रहती है, सुंदर रहती है, चलती है, फूलती है, नित्य जवान रहती है, भोग देती रहती है। हाँ वहाँ कल्प रूप है, जो मांगो सो मिलेगा, हाय 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 वहां कोई नहीं करता, जो चाहो सब मिलेगा, सब कुछ उपलब्ध है। इतना स्वर्ग लोग को और जाएगा तो दूसरे मजहब के लोग को सुना देगा, कपल करने से कोई नहीं जाएगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं याम न ब्रजन्ते अधर्मिष्ठा, बोले वह स्वर्ग लोग जिसका वर्णन परीक्षित महाराज मैंने तुमसे किया है वो लोग नहीं जा पाएंगे, बोले कौन नहीं जा पाएगा, अधर्मिष्ठा, बोले जो धर्म का पालन नहीं करते हैं उनको स्वर्ग लोक नहीं मिलेगा। और कौन नहीं जाएंगे, बोले खला, जो खल है वो नहीं जाएंगे, भूतक गुहा, बोले जीव जीवात्माओं की जो लोग हिंसा करेंगे, जीव हिंसा, जीव के प्रति मानवों के प्रति जो हिंसात्मक भाव रखेंगे वो नहीं जाएंगे, सफा सफता रखने वाले बताओ स्वर्ग लोग नहीं जा पाओगे, भाई को बता दो निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छेद ना भावा, हवा माने कहते हैं मुझे कपट छल छिद्र ऐसे लोग मुझे पसंद है। और तुम चाहे कितना भी कामी हो लोभी हो कुछ भी लेकिन छल कपट से रहित है भगवान की भक्ति है। बहुत ही प्रबल आ गई जाओ एक दो नहीं तीन नहीं सौ नहीं दस हजार नहीं एक करोड़ ब्राह्मणों की हत्या करके जो आया है और एक बार कहा हे प्रभु हम आपके शरण में आए हैं हमारी रक्षा करो भगवान कहते रक्षा सर्वों को जाने के लिए ये जुटे करते नाम न प्रजंती जा नहीं सकते अधार्मिक व्यक्ति नहीं जा सकते। अधार्मिक शब्द का अर्थ होता है सनातन धर्म के सनातन पंथ के अनुसार जो धर्म है उसी को मानने वाले जब तक जाएंगे ना कि दूसरे मजहब को उनको शिक्षा दो भाई ये जनजनीय कर्म बंद करो। किसने लिखा है धर्म को साक्षात भगवत नवई विदुर देवा अरे देवता लोग भी नहीं बनते गंभीर तत्व है धार्मिक नहीं आप लोग जानते हैं ये मक्का मदीना जो जाते हैं उनके दूसरे लोग हैं वो मक्का जाते हैं उसके आप क्या क्या करने के हज हज करने के पहली बार जो हज करने गए थे आप लोग जान दो चार बार ट्रेन गिरा कई बार ट्रेन गिरा कई सौ लोग मर गए। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले एक भगदड़ मची उसमें दो तीन सब लोग मारे गए उसमें भारतीय उनके मक्का में एक पत्थर है जिसको पत्थर को कहते हैं शैतान 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 कहते हैं और ये लोग इकट्ठे होते हैं उस शैतान को पत्थर फेंक करके मारे देखो कितनी मूर्खता है। वहां मक्का अल्लाह तला के घर में एक पत्थर है जिसका नाम है शैतान और ना जाने सदियों से उसको पत्थर फेंक करके मारने की विधि और लाखों मुसलमान मार इकट्ठे पत्थर फेंक मारे उन्हीं के संप्रदाय को लोग कहते जरा बताओ यदि तुम पत्थर में देवता को स्वीकार नहीं करते तो पत्थर में शैतान और अगर शैतान आया है हम तो कहते हैं कि वैकुंठ में शैतान नहीं है वैकुंठ के बाहर बिरजा है बिरजा के पार ब्रह्मज्योति था बिरजा बिरजा के इधर ही बहुत भाई कैसे आएगा वहां रजगुण का प्रवेश ही नहीं वहां शैतान कहां से आएगा पर तुम्हारे अल्लाह ताला के घर में शैतान कहां से आएगा दो दो नंबर प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न है सदियों से तुम शैतान को पत्थर से मारते क्यों नहीं मरा मरता क्यों कितनी बेवकूफी कोई भी सामान्य हिंदू भी इस तरह के तर्क को प्रश्न नहीं करता शैतान को पत्थर फेंक करके मारेंगे वो भी पत्थर है सदियों को शैतान मर गया वो तो नहीं बना यही मर गया। सनातन धर्म का पालन करने वाले जो लोग हैं वही सर्वोदय अर्थात भगवत गीता में जो लिखा हुआ है के आधार पर सलोक जाते हैं आगे कहता है ये दैवित्या माम सोम पाना पूत पापा लगी उसमें स्वर्गति प्राप्त एकम मक्का को नहीं समझा रहा ये यहाँ पर देव त्रैविद्या मां सोम का पुत्र पाप वो वेद की जो त्रय वेद त्रय दीक्षाम जो इनके अनुसार जो आराधना करते हैं उनको स्वर्ग लोक मिलता है पाप से रहित होते न कि अधार्मिक लोग को मिलता है कितने सोचने की बात है फला फल व्यक्ति नहीं जाता हमारे गुरु महाराज समझाते हैं खल और भूतद्रोह दूसरों की चिंता करने वाला उसको भूत द्रोह कहते हैं और खल किसको कहते हैं खल माने जो व्यक्ति अपना भी नुकसान करता है और दूसरे का नुकसान भी करता है उनको खल कहते हैं और भूतद्रोह का अर्थ होता है वो दूसरे का नुकसान करता है अपना कितना कुछ फायदा करता है इसका मतलब ये जो चलाते हैं ना कि अपने आक्रमण करते हैं अपने को मार देते हैं आत्मघाती हमला ये आत्मघाती हमला में एक खल लोग नहीं लेना चाहिए ये खल है चाणक्य पंडित ने कहा चाणक्य पंडित ने तो खल को बिल्कुल प्रस्तुत किया सर्पम क्रूर फलम क्रूर सर्पात क्रूर तरह फल यानी कि यदि सांप को भी फल माना जाए क्रूर माना जाए और फल को भी क्रूर माना जाए निष्क्रूर माना जाए चाणक्य पंडित परिभाषा निकालते हैं कि सांप से फल व्यक्ति ज्यादा क्रूर है निष्क्रूर बोले क्यों मंत्रों से भी बसा सर्प है बोले सर्प को तो आप मंत्र औषधि के जरिया से वशीभूत कर सकते हो फल कहना निवार्य बोले फल को आप वशीभूत नहीं कर सकते ये आत्मघाती हमलावर है उनको चाहे कितना भी समझाओ वो नहीं समझ फल है भूतक भी है उसमें हिंदू भी है कई मूर्ख होते हैं वो अपना नुकसान नहीं करते पर दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं बहुत दूसरों के लिए बहुत कुछ निंदक 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 होते हैं बहुत दूसरों के लिए बदाक होते हैं ये दोनों में मठा कपट करने वाले चीटिंग करने वाले धोखा देने वाले हमारे के नियम है चार नियम में से धोखा नहीं देना युद्ध क्रीड़ा धोखा नहीं चीटिंग नो चीटिंग नो गैम्बलिंग गैम्बलिंग का अर्थ है चीटिंग और जिनके अंदर अभिमान बहुत बढ़ा हुआ है वो भी नहीं जाएगा जो अधिक कामी है वो भी नहीं जाएगा जो अधिक लोभी है वो भी नहीं जाएगा अब प्रश्न उठेगा कामी तो वही है जिसने पुत्र से यज्ञ किया स्वर्ग के लिए इच्छा किया वही तो कामी है कभी तो किया फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं काम ही नहीं जाएगा तो हमारे गुरु महाराज अर्थ करते हैं कामी लोग ही उसको कहते हैं जितना अपना प्राप्त है उसके प्राप्ति होने के बाद जो अधिक इच्छा रखते हैं उनको लोभी कहते हैं कामी कहते वो नहीं कहते ये स्वर्गलोक की बात है इस प्रकार स्वर्गलोक का वर्णन करने के बाद श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कामदेव धानिम सबरोच निपतिर बहे समन्तागरुधे प्रतन्यया उस देव धानी इंद्रप्री को वरुथ निपति समस्त सेनानी के साथ बलि महाराज ने चारों ओर से कब्जा कर लिया घेर लिया आचार्य दत्तम जलजम महासनम आचार्य शुक्राचार्य ने जो जल दिया था शंख दिया था बस बलि महाराज ने अपना होंठ का स्पर्श कराया वो तो शंख की जो दिव्य ध्वनि हुई वो दिव्य ध्वनि प्रवेश करने मात्र से सारे देवता लोग थर थर कांपने लगे आचार्य दत्तम जलजम महासनम भयंकर ध्वनि हुई दधमो प्रयुञ्जन भयम् इन्द्रयोषितम् उस शंख की ध्वनि सर्वत्र फैल गई इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है और सब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे बोले इंद्र ने देखा कि बलि महाराज ने आक्रमण कर दिया फिर कोई उपाय नहीं अपने गुरु जी के पास जाते हैं गुरुदेव क्या हो रहा है और बलि इतना इतनी ताकत पर कैसे करें क्यों करें गुरु बृहस्पति कहते हैं इंद्र तुम्हारे पूर्व शत्रु बलि ब्राह्मणों की कृपा से इतना बलवान हुआ और इंद्र के मन में जो चिंता उठी थी ना जाने कैसे शक्तिमान हो गया और गुरु बृहस्पति कहते वास्तव में गुरु जी बृहस्पति है सब सबको सब जानते हैं गुरु जी आज भी भारतवर्ष में बृहस्पति को ही गुरु जानते हैं दक्षिण भारत में एक मंदिर है उस मंदिर का नाम है गुरुवायु मंदिर वहाँ गुरु माने बृहस्पति तो गुरु बृहस्पति कहते हैं इस समय इंद्र बलि को जितनी ताकत मिली है वो ताकत रघुवंशी ब्राह्मणों की कृपा से मिली है मानो रघुवंशी ब्राह्मणों ने अपना समस्त तेज को एकत्रित करके बलि को ही दे दिया अब ये बलि दूसरा कोई नहीं ये बलि महाराज नहीं है ये रघुवंशी ब्राह्मणों का तेज पूर्ण ही एकत्रित होकर के आया है हाँ सावधान हिंदू तुम क्या तुम्हारे जैसा कोई भी व्यक्ति बलि का सामना नहीं कर सकता भगवान हरि के अतिरिक्त इंद्र का सामना कोई नहीं कर सकता बलि का सामना कोई नहीं कर सकता और ये प्रलय काल के समान दिख रहा है अर्थात चक्र बड़ा प्रबल है जिस ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बलि महाराज इतने शक्तिमान बना हुआ है वही ब्राह्मण जब इससे रुष्ट हो जाएंगे उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है जब यह उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तब तो अपने परिवार परिकर के साथ नष्ट हो जाएगा तेसा तेसा मेव अपमानेन सानुबंधो यत्र जब ब्राह्मणों का निरादर करेगा तिरस्कार करेगा तो ये नष्ट हो जाएगा इसलिए मेरे मित्रों ब्राह्मणों का कभी अपमान मत करो हमारे कई भक्त हैं ये जमीन पहन करके ब्राह्मणों का बड़ा तिरस्कार कर हम उस पक्ष के कभी नहीं अरे भाई महाप्रभु ने कहा जिन्हें सम्मान दिए जाने कृष्ण अधिष्ठान एक शिव जी को भी सम्मान देना चाहिए और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर समाधान दिया है किम पुनः ब्रह्मण पुण्य भक्त राजस्व तथा नित्यम सुखम लोकम पुनः प्राप्त किम पुनः ब्रह्मण अरे यदि सामान्य वैश्य स्त्री भी मेरी भक्ति कर सकते हैं फिर जो लोग क्षत्रिय है उनके बारे में क्या कहें और फिर जो लोग ब्राह्मणपुर में जन्म हुए हैं फिर उनके बारे में क्या कहें फिर ब्राह्मणपुर में जन्म होकर के जो लोग ब्रज धर्म का पालन कर रहे हैं फिर उनके बारे में क्या कहेंगे फिर ब्राह्मणपुर में पैदा होकर के जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र का सोला माला जप करते हैं फिर उनके बारे में क्या कहें उनका तिरस्कार करना उनका अपमान करना अच्छा पता ही आप लोग विचार करो ये हमने अपनी छोटी बुद्धि में ये विचार किया कभी नहीं कर सकते तिरस्कार कभी नहीं कर सकते बृहस्पति ने कहा उन्हीं के अपमान से नष्ट हो जाएगा बृहस्पति जी देवताओं के हितकारी योगी शुक्राचार्य हितकारी योगी हितकारी बृहस्पति ने कहा प्रतीक्षा करो इंद्र ने कहा गुरु जी कब वो काल आएगा कब आएगा बृहस्पति ने कहा धीरज रखो जल्दबाजी मत करो समय आने पर सब हो जाता है बलि महाराज अपनी पूरी ताकत के साथ अमरावती में विराजमान इसका मतलब हुआ उस समय पूरे विश्व के जो सम्राट है शासक है शासन तंत्र बलि महाराज के हाथ में है मैंने कहा था जैसे दिल्ली भारत का ही है ऐसा ही पूरे विश्व का जो नियंत्रण है स्थान है अमरावती इंद्र सबका शासन करते हैं इसी प्रकार से बलि महाराज ने सबका शासन किया ध्यान देना चाहिए इंद्र जितना बढ़िया शासन नहीं करता था बलि महाराज उससे बेहतरीन शासन करते थे आप प्रश्न करोगे फिर बलि महाराज गए क्यों उन्होंने भोग की इच्छा नहीं की हाँ बलि महाराज जी ने भोग की इच्छा तनिक भी नहीं की वो भक्त ऐसे स्वभाव में ही थे लेकिन एक जिद्दी है वो हमको भी हराते हैं, हम भी उनको हराएंगे। हाँ बस वो हमको भगाते, हम भी उनको भगाएंगे। जाओ भागो यहाँ से। बलि महाराज जी का शासन बढ़िया था। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब बलि विश्व विजयी हो गए तो शिष्य प्रेमी भगवान आचार्य ऐसे जब शासन कर रहे थे सब कुछ दसदान प्रजाओं ने भी दसदान किया। जय महाराज बलि की, जय भक्तराज बलि की। हाँ भाई उनके शासन काल में कभी हम होंगे भी, कभी भी हो भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। ना जाने कितने करोड़ जनों में हम लोग आए, चक्र में आए, देखे भी होंगे, याद भी नहीं होगा। हाँ स्वर्ग मर्त या पातल ना जाने कितने घूमे हैं, ब्रह्मांड घूमे थे। बलि महाराज शासन, लेकिन जबरदस्ती तो पोजीशन में बैठ गए बहुमत से चुका रहे। कभी कभी कोई नेता जबरदस्ती तो बैठ जाता है लेकिन बहुमत सिद्ध करना होता है, होता है ना राजनीति में भी, फिर दोबारा इलेक्शन होता है, दोबारा वोटिंग होती है। शुक्राचार्य ने कहा हाँ जी महाराज, महाराज बलि यहाँ भी वोटिंग है। बोले क्या? बोले स्वर्ग में वही बैठ सकता है जो सो असमर्थ यज्ञ कर चुका हुआ होता है। ये जो पुरंदर है इन्होंने सो असमर्थ यज्ञ किया था इसीलिए बैठा था, और तुमको बैठ गए जबरदस्त, पर तुम्हारे हाथ में तो पूरा शासन तंत्र नहीं है, कभी भी प्रभु आएंगे और तुमको यहाँ से हटा देंगे। बोले देखो यू आर नॉट क्वालिफाइड, गो आउट, आपकी योग्यता नहीं है, सो असमर्थ यज्ञ आपने संपन्न नहीं किया, जल्दी जल्दी बहुमत सिद्ध करो। तो गुरु जी क्या करना पड़ेगा? तो असमय यज्ञ करना चाहिए, कैसे होगा हम करेंगे। बलि महाराज की अच्छा गुरु तैयार, अब सारे शिष्यों को बलि महाराज जी अपने गुरु जी को सहमत होकर सो असमय यज्ञ करवाए। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोगों से बाहर भी दसों दिशाओं में फैल गई, और नक्षत्रों का राजा चंद्रमा के समान बलि महाराज स्वर्ग की अमरावती में शीर्षधारण करने लगे। सभी प्रजा का स्नान करने लगे, पर जो देवता आगे वो करते थे स्वर्ग का, वो देवता आगे भक्त बन करके और उनकी माँ अदिति बड़ी दुखी हो गई। देखो कश्यप की स्थिति भी बड़ी विकराल है, उनकी पत्नी है दीति, उनकी पत्नी है आदित्य, एक के पुत्र है दैत्य, एक पुत्र है आदित्य, और आदित्य उन्हें शासन किया था, दीति दुखी थी, और दीति के पुत्र शासन कर रहे आदित्य बेचारे क्या कर सकती थी, मन मांगे बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी। एक दिन कश्यप जी की समाधि खुली और कश्यप जी अपने घर परिवार देखभाल करने के लिए आए। कश्यप जी अपनी पत्नी से क्या पूछते हैं और उन्होंने क्या निवेदन किया और किस तरह से कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी अदिति को समाधान दिया और किस तरह से अदिति उनको प्रसन्न करती है, ये सारी बातें कल सुनेंगे। हम यहीं पर अपने वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। आए बाचा मन से बुद्ध्यात्मान स्वभाव करोति जग जग सकलम परस्मै नारायणायेत समर्थ। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय हो, महाराज बलि की जय हो, वामन भगवान की जय हो, समस्त श्रोता भक्त की जय हो। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण जय कृष्ण। प्रश्न आखिर में पूछ लिया सर्व कितना बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को सार्वभौम प्रभु को नमन सत्यानंद प्रभु अग्रवाल जी है बाकी जितने भी आप सभी संत भक्त हैं सबको धन्यवाद।
Gracias.